मथुरा गए और मथुरा में ही भगवान ने कंस का उद्धार किया, कंस का वध किया था। भगवान ने जब कंस का वध किया, कंस का उद्धार किया, तो कंस की जो पत्नियां थी, उसकी दो पत्नियां थी, एक का नाम था अस्ति और दूसरे का नाम था प्राप्ति। तो कंस के संबंधियों को इस बात का बहुत दुख लगा कि कृष्ण ने कंस का वध किया, कि कंस को मार दिया। लेकिन सबसे ज्यादा दुख किस बात, किस व्यक्ति को लगा, उसकी जो पत्नियां थी। भाई लोग तो मर ही गए, मार दिए गए, कोई बचा नहीं, तो इनकी पत्नियों को बहुत दुख लगा। और अस्ति और प्राप्ति दोनों के पिता थे कंस, सॉरी जरासंध, मगध, पटना और गया के बीच में एक स्थान है, उसका नाम है गिरी ब्रज। इसको भी ब्रज कहते हैं, गो ब्रज कहा जाता है। हम लोग जहाँ परिक्रमा कर रहे थे, गायों का ब्रज, वहाँ पर बहुत छोटी छोटी और बड़े बड़े पहाड़ी हैं, पर्वत हैं, इसीलिए उस क्षेत्र को गिरी ब्रज कहते हैं। तो वहाँ से थी वे दोनों पत्नियाँ, कंस की दोनों पत्नियाँ अस्ति और प्राप्ति, अपने दुख को बता दिया अपने पिताजी से, जरासंध से। तो जरासंध उस समय के सबसे बड़े राजा थे, उसके समान बलवान, उसके समान धनवान, उसके समान यशस्वी उस समय और कोई राजा नहीं था पृथ्वी पर। तो यद्यपि कि वह भगवान के संबंधी थे, भगवान के जरासंध क्या लगेंगे, भगवान के माता के नाना, निकट का संबंध था भगवान से। तो पहले तो प्रसन्नता थी, लेकिन बच्चे ने, कृष्ण ने उनके जमाई कहते हैं ना, जमाई को मार दिया, तब उस और उसकी दो पुत्रियां विधवा हो गईं, तो उसको बहुत दुख लगा। और उसको, उसके मन में यह बात आ गई कि बस अब फाइनल है, पृथ्वी पर एक भी यदुवंशी नहीं रहना चाहिए। अब कोई भी जात कृष्ण के परिवार में जिसका जन्म हुआ है, तो उस व्यक्ति को पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, यह संकल्प उसका हो। यह जब उसका संकल्प हो गया, तो मथुरा पर उसने आक्रमण किया, 23 अक्षौणी सेना के साथ आक्रमण किया था। हम लोग जा रहे हैं लोहबन, लोहबन ही भगवान की सेना के साथ और जरासंध के साथ युद्ध होता था, उसी क्षेत्र में युद्ध क्षेत्र था लोहबन, मथुरा का बाहरी भाग है। तो वो आक्रमण करता रहा, कई बार आक्रमण किया। प्रथम बार जब आक्रमण किया, और 23 अक्षौणी, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो उसमें कितनी संख्या थी, 18 अक्षौणी, 11 अक्षौणी सेना थी कौरवों के पास, और 7 थी पांडवों पर, दोनों को मिलकर 18 अक्षौणी सेना थी महाभारत युद्ध में। और जरासंध के पास अकेले 23 अक्षौणी सेना थी। बहुत बड़ी सेना लेकर वह आक्रमण किया मथुरा पर, मथुरा पर आक्रमण किया। आक्रमण करने से पूर्व वो कुछ ब्राह्मणों को बुलाया था, विजय प्राप्त करना है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद की आवश्यकता है, तो ब्राह्मणों को खूब सम्पूर्ण फीस्ट दिया, खूब बढ़िया खिलाया पिलाया, दान दिया, और उन लोगों से कहा कि आप हमको वरदान दीजिए कि मैं युद्ध में विजयी हूँ। तो ब्राह्मणों ने खूब बढ़िया से भोजन पाया था, खूब सम्पूर्ण फीस्ट और कुछ ऊपर से दान भी, तो सबने दिल खोल कर आशीर्वाद दिया था कि विजयी भव, युद्ध में आप विजयी हो जाओगे। तो अपना सेना का बल था, अपने आप में वह पर्याप्त था सैन्य बल, और दूसरा बल था ब्राह्मणों के आशीर्वाद का बल, वही बहुत बड़ा बल होता है। आक्रमण किया तो युद्ध में तो उसकी सारी सेना मार दी गई। भगवान कृष्ण और बलराम और जदवंशियों की जो सेना थी मथुरा की, उस पर आक्रमण किया, सबको मार दिया। जरासंध के जीवन में प्रथम बार यह घटना घटी कि उसे पराजय देखना पड़ा। अब तक वह कहीं भी किसी भी युद्ध में हारा नहीं था, प्रथम बार वह हार गया तो हारने का उसे इतना भारी दुख था कि सोचता था कि मैं कौन सा मुंह लेकर गिरी ब्रज में मगध में जाऊंगा। तो जो दो मंत्री लोग जो बचे थे उनको कहा कि तुम लोग जाओ मेरे पुत्र को राज्याभिषेक कर देना, और मैं अब नगर में प्रवेश नहीं करूंगा, मैं अब हिमालय की तरफ जाऊंगा, भजन करूंगा, तपस्या करूंगा। तो मंत्रियों ने बहुत उनको समझाया कि अरे युद्ध में तो होता है किसी की विजय होती है, किसी का पराजय होता है, इसे घबराना नहीं चाहिए। तो उन लोगों के मंत्रियों के कहने से पुनः जरासंध गया गिरिब्रज में मगध में, और पुनः उसने सेना इकट्ठा किया, फिर 23 अक्षौणी सेना, और फिर आक्रमण किया। तो जब भी वो आक्रमण करता था तो भगवान करते थे सभी सेना को मार देते थे और उसको पकड़ लेते थे, लेकिन पकड़ कर छोड़ देते तिरस्कृत करके, और हमेशा यही संकल्प लेता था कि अब मैं गांव में नहीं जाऊंगा, नगर में प्रवेश नहीं करूंगा, अब मैं भजन करूंगा हिमालय में जाकर। लेकिन मंत्री लोग समझाते रहे, इस तरह 17 बार आक्रमण उसने किया और 17 बार वह पराजित हो गया। 18वीं बार आक्रमण करना था तो ब्राह्मणों को बुलाया, वैसे खूब बढ़िया से उनको खिलाया पिलाया, दान दिया, और ब्राह्मण लोगों ने आशीर्वाद दिया, तुम विजयी भव, तुम युद्ध में विजयी होगे। तो सबको बताया ठीक है आप लोग खड़ा बैठिए, 17 बार आपने हमको चीट किया है, आशीर्वाद आप देते थे और 17 बार मैं हारा, इस बार कहीं युद्ध में मैं हार गया तो एक व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा, काट दूंगा। धोखा देते हो, आशीर्वाद देते हो। अब तो ब्राह्मण लोग बड़े चक्कर में पड़े, और वह कहा था तो कोई जोक नहीं किया था, मजाक नहीं किया था, वो सीरियस था, जानते थे ब्राह्मण लोग, समझ गए सीरियसनेस को कि ये 17 बार इस दुष्ट के यहाँ खाने का क्या निजाम हो सकता है। अब तो चिंता में पड़े, और यह भी चिंता थी भगवान के साथ इसको युद्ध करना है तो हारना तो इसको है ही, अब हम लोग क्या करें। तो वो लोग याद आई, वो लोग जानते हैं कि भगवान ब्राह्मणों के भक्त हैं, ब्राह्मणों की बात सुनते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय, भगवान का नाम ब्रह्मण्य देव, ब्राह्मण जिसके देवता हैं, देवताओं की पूजा भगवान करते, सॉरी ब्राह्मणों की पूजा देवता के समान भगवान करते। सभी ब्राह्मण लोग चिंतित हो गए कि अब तो जाएगा युद्ध में हार जाएगा, और आएगा तो यह भी इतना ही नहीं कहा था, आप लोगों को और आपके परिवार को, पत्नी को, बच्चे को, सबको काटूंगा। तब ये बेचारे क्या करे, चिट्ठी लिखे भगवान के पास, ब्राह्मण लोग सब मिलकर दूत भेजे, चिट्ठी में ही लिखे, भगवान आप हार जाएंगे अथवा जीत जाएंगे आपके लिए कोई अंतर नहीं पड़ेगा, आप भगवान हैं। चाहे हार गए तभी आपका जश है, जीत गए तभी आपका जश है, इसलिए आपको तो अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन इस बार यदि कंस हार गया, सॉरी जरासंध हार गया, तब क्या होगा? हम मारे जाएंगे, हमारे हमारी पत्नियां मारी जाएंगी, हमारे पुत्र मारे जाएंगे, हमारे खानदान ही नष्ट हो जाएगा। चलो भगवान इस बार आप हार जाइएगा, हम लोगों की रक्षा के। भगवान जानते थे चिट्ठी पहुंच गया पहले, इसके बाद जरासंध अपनी सेना के साथ आक्रमण किया। 17 बार भगवान जरासंध को पराजित कर चुके थे, लेकिन 18वीं बार भगवान ने क्या किया, सेना को देखते ही आए भगवान रथ पर चढ़कर। कृष्ण बलराम रथ पर आ रहे थे, इधर से इसकी सेना, पूरब से उसकी सेना थी, पश्चिम से मथुरा नगर से भगवान की सेना, और भगवान रथ पर। भगवान रथ सेना को देखे, सैन्य व्यवस्था को देखे, तो भगवान इतना भी कहे जल्दी से जल्दी कि रथ को जल्दी मोड़ो पीछे, लेकिन उसे मोड़ने में देर हो गया, भगवान कूद कर भाग गए। कूद कर पीछे भाग गए, मैंने ऐसा भयभीत किया रहे इसके तुम्हें हार जाऊंगा, पराजित हो ही गए। कंस सॉरी जरासंध खूब उसे कहा, कह रहे तुम रुको, तुमको मैं मारूंगा नहीं, मैं उनको प्राण भिक्षा दे दूं, प्राण दान दे दूंगा। तुम वसुदेव जी के पुत्र हो, तुमने वसुदेव जी के नाम को डुबा दिया, जदुवंश में तुम्हारा जन्म हुआ है, युद्ध से तुम भागते हो, क्षत्रियों के लिए सबसे बड़ा यह निंदनीय कार्य है। मैं तो समझता था कि तुम वीर हो, लेकिन आज मैं समझ गया कि तुम कायर हो। युद्ध से भाग जाना क्षत्रिय के लिए बहुत खराब माना जाता है। ऐसा कहा जाता है किसी ब्राह्मण को आमंत्रित किया जाए खाने के लिए और वह कह दे कि मैं नहीं जाऊंगा, अस्वीकार कर दे कि भोज को, तो बहुत निंदा का पात्र होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण का अधिकार नहीं है कि कोई उसको निमंत्रण कर दिया तो कह दे कि मैं नहीं जाऊंगा खाऊ। ऐसे क्षत्रिय के लिए युद्ध में भाग जाना बहुत निंदा। इसीलिए भगवान का नाम एक हो गया रणछोड़। रणछोड़ बहुत भारी क्षत्रिय के लिए गाली है, वो तो दूसरी बात है, भगवान के लिए वह जस का कारण बन गया, ब्राह्मण के लिए भगवान ने पराजय भी स्वीकार किया। तो इस तरह से भगवान युद्ध का परित्याग कर दिए, तो ऑफिशियली वह विजयी हो गया, विजय मिल गया उसको। उसी समय भगवान मथुरा का त्याग करके यहाँ से भाग कर द्वारका चले गए, उसने ही खदेड़ दिया यहाँ से। फिर उसके बाद वो रहता था भगवान, तब चले ही गए द्वारका, चले जन्मभूमि, खूब उसने गाली दिया है। जरासंध और वो दूसरा शिशुपाल, भगवान को इतना भारी गाली तो कहे हैं कि अरे इतना नलायक व्यक्ति जदुवंश वसुदेव जी का पुत्र निकला कि अपने जन्म भूमि को छोड़कर और जाकर उधर समुद्र में रहता है। मथुरा कितनी पवित्र भूमि है, 7 मोक्षदायिनी पुरियों में से मथुरा है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तय का मुक्तिदायिका। 7 पुरियां हैं जिसमें निवास मात्र करने से मुक्ति मिल जाती है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती, ये 7 पुरियां हैं। तो उसमें मथुरा एक है, मथुरा को छोड़कर अपने जन्मभूमि को इसने परित्याग किया क्षत्रिय होकर। भगवान वहां रहते थे, लेकिन जरासंध इस बात को भूल नहीं सका कि भगवान ने कंस का वध किया। बहुत दोषारोपण करता था, कंस मामा लगते थे, भागवतम के शुरू शुरू में, दशम स्कंध के शुरू शुरू में आप पढ़ेंगे, एक प्रश्न है परीक्षित महाराज का। उन्होंने पूछा है कि परीक्षित महाराज, भ्रातरम चावधि कंसम मातुर अद्धा तदर्हणम। मामा पिता के तुल्य पूज्य हैं, लेकिन भगवान ने अपनी माँ देवकी के जो भाई थे उनका वध क्यों किया? परीक्षित महाराज कहते हैं यह योग्य नहीं है, यह कार्य भगवान को नहीं करना चाहिए। मामा का वध पिता का वध जैसा है, भगवान ने क्यों किया? तो उसी तरह हम वह बात कहने चाहिए कि वह बहुत क्रोधित रहता था जरासंध उसी समय में, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकता था, भगवान तो भाग ही गए थे। तो भाग गए थे तो उनको मारने में, उसको आक्रमण करने में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था, अपना जश नहीं समझता था। उसी समय जिस समय युधिष्ठिर महाराज राज्य कर रहे थे पृथ्वी पर, अभी राज्य का विभाजन हो चुका था, हस्तिनापुर के राज्य का दो भागों में बांट दिया गया था। हस्तिनापुर के राजा थे दुर्योधन और युधिष्ठिर महाराज कहाँ के राजा थे? इंद्रप्रस्थ। इसके बाद उतना झगड़ा सीरियस नहीं था, बाद में झगड़ा आपस में चालू हो गया। उसी समय महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते थे। राजसूय यज्ञ बहुत एक्सपेंसिव यज्ञ है। अब तक इने गिने लोगों ने सफलतापूर्वक राजसूय यज्ञ किया है। महाराज युधिष्ठिर जो राजसूय यज्ञ किए थे, तो उसमें राजसूय यज्ञ में जितने पात्र का प्रयोग किया गया था, सोने के पात्र इतना ही नहीं, जो वेदियां बनी थी, यज्ञ कुंड बने थे, तो ईंट सोने के ईंट के बनाए गए थे, बहुत एक्सपेंसिव। उसको यज्ञ करना बहुत कठिन होता है, बहुत खर्चीला होता है, लेकिन महाराज युधिष्ठिर की इच्छा हुई कि मैं भी राजसूय यज्ञ करूं। और राजसूय यज्ञ करने के लिए सभी राजाओं को, पृथ्वी के जितने राजा हैं, उनको हराना होता है, उनको परास्त करना होता है, और उनसे टैक्स लेना होता है, उनके धन इकट्ठा करना होता है। भगवान से पूछे तो भगवान ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, आपको यज्ञ करना चाहिए। भगवान से ही पूछे थे, कृष्ण से। युधिष्ठिर महाराज संकल्प ले लिए कि उनको राजसूय यज्ञ करना है। राजसूय यज्ञ करने के लिए धन की आवश्यकता है, तो उन्होंने सहदेव को, अपने एक भाई सहदेव को दक्षिण दिशा में भेजा था दिग्विजय के लिए। तुम जाओ दक्षिण दिशा में, दक्षिण के जितने राजा हैं उनको, उन पर, उनको परास्त करो और उनसे धन इकट्ठा करके लाओ। तो सहदेव दक्षिण दिशा में गए थे और नकुल गए थे प्रतीची पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में कौन गए थे? नकुल। और उत्तर में स्वयं अर्जुन को काम दिया गया था, उत्तर में जाकर विजय राजाओं को जीतो और उनके से प्रचुर मात्रा में धन का संग्रह करके लाओ। और वीर वृकोदरन भीम को पूर्व दिशा दिया गया था। पूर्व किधर है? मगध, गया, पटना पूर्व दिशा में है। तो पूर्व में जाना था, पूरे बंगाल तक, आसाम तक, पूरा उनको दिया गया था, वह जोन बांटा गया था भीम को। तो सब लोग तो गए खुशी से, विजय कर सकते थे। अर्जुन उत्तर दिशा में गए, सहदेव दक्षिण दिशा में गए, नकुल पश्चिम दिशा में गए और भीम
पूर्व दिशा में जाना था, लेकिन अभी पता था कि पूर्व दिशा में शासन है जरासंध का। तो भीम गए तो जरूर अकेले, कुछ विजय भी उन्होंने किया, लेकिन जहां जब यह प्रश्न आता था उस पर आक्रमण करने का तो भीम कांप जाते थे। तो उन्होंने बताया भीम ने महाराज युधिष्ठिर से कि मैं सबको तो विजय कर सकता हूँ, जरासंध पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता हूँ। तो वो युधिष्ठिर महाराज गए, युधिष्ठिर महाराज कृष्ण से कहे, भगवान से कहे कि भगवान कैसे जरासंध का वध किया जा सकता है, कैसे उस पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। तो भगवान ने कहा कि उसको मारना इम्पॉसिबल है, उस पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता है। भगवान कहे कि मैं भी चलता हूँ, मैं कुछ करूँगा। तो भगवान खुद गए और भीम को और अर्जुन को साथ ले लिए। भीम सेन अर्जुन कृष्ण ब्रह्म लिंग धरास्त्र। और भगवान कहे कि इस भेष में नहीं, अर्जुन को बता दिए कि आप ब्राह्मण के भेष में सजा लें, और भीम भी ब्राह्मण के भेष, और खुद भगवान भी ब्राह्मण के भेष में ब्रह्मलिंग धरास्त्र। तीनों ने कौन सा भेष बना लिया, ब्राह्मण का भेष बना लिया। और ये तीनों भगवान कृष्ण, भीम और अर्जुन, भगवान ने यह पहले ही बता दिया था कि सब लोग मत बोलना, केवल मैं बोलूंगा, आप लोग केवल, अब तीनों आदमी इधर कुछ आप लोग से गलती हो जाएगी, इसलिए मैं बोलूंगा सबके बिहार। तो वे गिरिब्रज में गए। गिरिब्रज मतलब मगध की जहां राजधानी थी, उसका विशेष इस समय नाम है, मुझे नाम नहीं याद रहा था, राजगृह, राजा का घर। वो उस स्थान को, राजा तो दूसरे जगह भी रहते थे, लेकिन इतना बड़ा राजा था, राजा तो युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर में रहते थे, उसको राजगृह नहीं कहा जाता था, राजा मतलब जरासंध, और वह जहाँ रहता था वह राजा का राजगृह। वह गए, भगवान गए वहां पर, और ऐसे समय में गए कि दिन का एक विशेष काल होता है, उस समय कोई ब्राह्मण आपके पास आ रहा है तो उसका अर्थ होता है कुछ दान मांगने के लिए आया हुआ, एक विशेष बेला होता है 2 बजे के आसपास, 12 बजे के बाद 1-2 बजे के आसपास एक समय होता है, किसी को दान लेना है तो राजाओं के पास उसी समय जाता है, राजा लोग भी जानते हैं इस समय कोई आ रहा है, मतलब कोई दान चाहता है, कुछ मांगने के लिए आ रहा है, याचक बनकर आ रहा है। तो उसी समय भगवान गए, उसे अतिथि बेला कहा जाता है, ते गत्वा अतिथि बेलायां गृहेषु गृहमेधिनम। राजा जरासंध ब्राह्मणों का भक्त और गृहस्थोचित धर्म का पालन करने वाला था, उसके विषय में बताया गया है कि गृहस्थ का जो धर्म होता है खूब बढ़िया से सम्यक रूप से पालन करता था। कोई अतिथि आता है तो गृहस्थ का कर्तव्य होता है कि अतिथि की देवता के समान, भगवान के समान पूजा करे, इस नियम में पक्का था। और विशेषकर ब्राह्मण्यम, ब्राह्मणों के प्रति तो अत्यंत उसकी श्रद्धा थी, बड़ा प्रेम था। तो तीनों गए तो अपने राज्य सिंहासन से उठकर ब्राह्मण लोग हैं, प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया, ब्राह्मण वो जानता था कि तीनों ब्राह्मण है, भगवान को प्रणाम किया, भीम को, अर्जुन को प्रणाम किया, बहुत बढ़िया से स्वागत किया। और इसके बाद स्वागत किया, कहा कि मेरा सौभाग्य है, मेरा बहुत भाग्य है, मेरा घर पवित्र हो गया, आप जैसे ब्राह्मण हमारे घर में आए, आप जो कुछ मांगेंगे मैं दे सकता हूँ, आप मांग लीजिए। इस समय आए हैं तो मैं समझ रहा हूँ कुछ आप याचना कर रहे हैं निकले को दान मांगने के लिए आए, तो संकोच मत कीजिएगा, यदि हमारा प्राण मांगेंगे तो वह भी दे सकता हूँ। तब पहले से सिखाए थे भगवान के दूसरे को नहीं बोलना है, भगवान बोले राजन आपका कल्याण हो, हम तीनों आपके अतिथि हैं, ब्राह्मण हैं और बहुत दूर से आ रहे हैं, हम यहाँ कोई विशेष प्रयोजन से आए हैं, सचमुच आपको आपका अनुमान सही है, हम आपसे कुछ लेने के लिए आए, कुछ दान मांगने के लिए आए। और भगवान ने खूब, आप जैसे दानी के लिए तो कुछ बात ही नहीं, आप सब कुछ दे सकते हैं। भगवान ने यह कहा है, मैं उसको भागवतम से पढ़ता हूँ। तितिक्षु पुरुष क्या नहीं सह सकते, दुष्ट पुरुष बुरा से बुरा क्या नहीं कर सकते, और उदार पुरुष क्या नहीं दे सकते, उदार पुरुष आप जैसे उदार पुरुष क्या नहीं दे सकते, दानी व्यक्ति क्या सब कुछ दे सकते हैं। भगवान ने कहा बड़े बड़े दानी हैं, उनको जस मिला है, जो पुरुष स्वयं समर्थ होकर भी इस नाशमान शरीर से ऐसे अविनाशी जस का संग्रह नहीं करता जिसका बड़े बड़े सत्पुरुष भी गान कर सकें, सच पूछिए तो उसकी जिंदगी निंदा जितनी निंदा की जाए थोड़ी है। भगवान कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज है जस प्राप्त करना, जस कमाना चाहिए, कुछ भी त्याग करके जस, जस समझते हैं कीर्ति रिपुटेशन, इसकी रक्षा होनी चाहिए। जस कमाना, जस कैसे मिलता है, दान देने से मिलता है। बड़े बड़े यशस्वी हैं हरिश्चंद्र, भगवान कहे राजा हरिश्चंद्र क्यों दान क्यों की ख्याति है, काल ने सब कुछ नष्ट किया, उनके परिवार को उनके शरीर को नष्ट कर दिया, लेकिन उनके यश को नष्ट नहीं कर सका, महाराज हरिश्चंद्र दान दे। रंती देव, जानते हैं रंती देव की कथा, मृत्यु जैसा स्थिति थी फिर भी उन्होंने दूसरे को दान। सीबी महाराज, सीबी महाराज कथा जानते हैं ना, सीबी महाराज की यह कथा है, भगवान कहे कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर को दान ही दे दिए थे, बलि महाराज बलि सब कुछ त्याग दिए, दान दे दिए, तो उनका जस कितना बढ़ा हुआ है। और भी व्याध कपोत बहवो यधुर्मेण ध्रुम गता, इस नाशवान शरीर है लेकिन इस नाशवान शरीर से उन्होंने अजस कभी नष्ट नहीं होने वाली कीर्ति जस को कमा लिया था, इसलिए सबसे प्रयास क्या करना चाहिए, जस कमाना चाहिए, उसके लिए कुछ भी करना है पीछे नहीं हटना चाहिए। भगवान ऐसे बोल रहे थे तो लगता था कि इस व्यक्ति का मैं आवाज कहीं सुना और यह भी उसको लगता था कि ऐसा लगता है कि मैं इनको कभी देखा भी है। इसके बाद अर्जुन और भीम के शरीर के तरफ देख रहा था तो उसको लगा कि ये तो ब्राह्मणों का शरीर ऐसा गठीला नहीं होता है, शरीर से ब्राह्मण मजबूत नहीं होते हैं, कमजोर होते हैं तपस्या से करने से, और इनका शरीर तो एकदम से ब्यूट है, बढ़िया स्वस्थ। उसे शक होने लगा कि ब्राह्मण ऐसा नहीं हो सकता, और यह भी शक होने लगा कि इस व्यक्ति को कृष्ण को भी जो बोल रहा है ब्राह्मण, लगता है कि मैंने कहीं देखा है और उसकी आवाज भी सुनी है लेकिन स्मरण नहीं आ रहा था। तो थोड़ा इसको पढ़ ही देना, उसे
फिर इसके बाद लेकिन जो कुछ हो मतलब क्या है, हमारे यहाँ पर भिक्षुक बनकर आए हैं, कोई भी हो, क्षत्रिय हो चाहे जो कुछ है, भिक्षुक बनकर आए हैं, तो कहा ठीक है, संकोच की बात नहीं है, आप जो कुछ मांगना आप लोग मांगिए, मैं देने को तैयार हूँ। प्रतिज्ञा किया कि कुछ भी अदेय मेरे लिए नहीं है, आप मांगिए। तो भगवान कहे युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद सो यदि मन्यसे। महाराज हम लोग द्वंद युद्ध, दो आदमी जिसमें लड़ते हैं उसको द्वंद युद्ध कहते हैं। हमको युद्ध चाहिए, आपसे हम युद्ध करना चाहते हैं, माने आप रहेंगे और हम तीनों में से एक व्यक्ति लड़ेगा, द्वंद युद्ध हम आपसे करना चाहते हैं। युद्धार्थिनो वयम प्राप्त राजन्य नन, हम लोग भूखे नहीं हैं, अन्न कांक्षीय नहीं है, हम लोग को भात नहीं चाहिए, हम आपसे दान मांग रहे हैं, क्या दान हमें, युद्ध। तो यह जब सुना तो पहले तो उसे शक हो ही रहा था कि ब्राह्मण होते तो कुछ अन्न मांगते, कुछ रुपया मांगते, गाय मांगते, युद्ध मांगते हैं। तो जोर से उसको हंसी आ गई, खूब जोर से हंसा, उसे माने हंसी आ गई, वो तो युद्ध उसको बहुत अच्छा लगा कि अरे तो हमारी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी, युद्ध तो हमेशा उसका उत्साह था युद्ध करने में, तो खूब उसे जोर से हंसी आई थी। एक बार थोड़ा हंस, अभी पहचाना नहीं था, इसके बाद थोड़ा नजर गया अर्जुन के बाएं हाथ के तरफ, तो प्रत्यंचा जो रस्सी खींचते हैं ना ऐसे रगड़ होता है, तो इसमें लगा हुआ था रगड़, तो समझ गया कि क्षत्रिय को होता जो धनुष चलाते हैं, धनुष से पकड़ते हैं प्रत्यंचा, रस्सी को खींचते हैं तो छोड़ते हैं तो इस पर रगड़ हो जाता है, उस वक्त था। तो अब हक्का बक्का हंसी आ रही थी, बड़ा अच्छा हुआ कुछ ना कुछ हो गया काम, हमें युद्ध का अवसर मिल गया, लेकिन जानता नहीं था कि कौन है। तो भगवान कहे अशो ब्रीतोदरह पार्थस तस्य भ्राता अर्जुन गया। भगवान ने कहा कि उसने पूछा कि अच्छा आप बताइए, ऐसा तो हमें लग रहा था कि कभी देखा है आपको, आप हैं कौन, आप तीनों कौन है। तो भगवान कहेंगे अशो यह भीम है, कुंती का पुत्र, महाराज पांडु का द्वितीय पुत्र, युधिष्ठिर का भाई, यह भीम है। और यह कौन है, अर्जुन, विश्व का सबसे बड़ा आर्चर, धनुर्विद्या का ज्ञाता, कुंती का पुत्र, महाराज पांडु का पुत्र, यह है अर्जुन है। मेरे विषय में भी जानना चाहते हैं।
बता ही दीजिए, अनुमान तो कर लिया, लेकिन अनयो मातुलेम,
इन दोनों के, ये दोनों में इनका मातुले, इनके मामा का मैं लड़का हूँ, मैं ममेरा भाई हूँ, और मेरा नाम है कृष्ण,
और आपका नंबर वन शत्रु।
एक प्रथम कोटि आपका शत्रु भगवान ही, अनयो मातुलेयम, इन दोनों का मैं ममेरा भाई हूँ, इनके मामा का मैं लड़का हूँ, मेरा नाम कृष्ण है और आपका नंबर वन शत्रु। तो पहले तो थोड़ा हंसा था, लेकिन अब यह सुन, अब तो एकदम प्रकट हो गया कि कौन है। यह सुनकर उसे इतना जोर से हंसी आई, इतना जोर से हंसे पूरा वो राजमहल ही गूंज गया। इसके बाद बहुत प्रसन्न हुआ, आह चामर्षितो मंदा युद्धम तरही ददामि वह, भर्सना किया कि मंद कहीं का, अरे तुम लोग क्षत्रिय रूप में आए होते, लेकिन युद्ध चाहे तो युद्ध में देता हूँ, मैं युद्ध करूंगा, लेकिन
भगवान को कहा, आपसे मैं युद्ध नहीं कर सकता, तुम तो भीरू है, कायर हो। अरे वाह, तुमने वसुदेव जी का नाम डुबा दिया, यदुवंश के नाम कीर्ति को नष्ट कर दिया, युद्ध में तुम भागा था, तुम भीरू हो, कायर हो, तुमको तुमसे साथ मैं युद्ध करूंगा और जीत भी जाऊंगा तो मैं मेरी अपकीर्ति होगी, ऐसे कायर व्यक्ति से युद्ध कर, तुमसे तो युद्ध करने का कोई प्रश्न नहीं है। तुम युद्ध में विचलित व्याकुल हो जाते हो, तो तुम्हारे साथ युद्ध करने से मेरा अपजस होगा, अपकीर्ति होगी, कायर व्यक्ति से, डरपोक व्यक्ति से, वैसे लोग का मैं हाथ छूना भी नहीं चाहता हूँ। कहा है कि मथुराम स्वरिम स्वपुरिम तक्ता समुद्रम स्वयं गतर, तुम जैसा नलायक व्यक्ति मथुरा जैसी पवित्र नगर को, अपनी जन्मभूमि को छोड़कर और समुद्र में रहते हो, हम लोगों के यश को तुमने नष्ट कर दिया। पारिवारिक संबंध था और जहां तक अर्जुन का प्रश्न है, अर्जुन मुझसे उम्र में छोटा है, इसलिए और यह भी इस पर भी शाप है नपुंसक होने का, नपुंसक इसके साथ युद्ध करने का क्या मतलब, नपुंसक साप था ना, उर्वशी ने उनको शाप दिया था इसके साथ भी युद्ध। हाँ, भीम भी तो हमारे बाल बल के बराबर तो नहीं, लेकिन चलो भाई तुम किसी का युद्ध करो, भीम से ही मैं करूंगा। इसके बाद अपने पुत्र को, पुत्र का नाम था सहदेव, कितना भी संबंध तो जान गया हमारा नाती है, कृष्ण आया हुआ है प्रथम बार, और कुछ भी है तो राजा है ना, भागा हुआ जो कुछ राजा है, और अपना एकदम निकट का संबंध ही मैं नाना हूँ, तो अपने पुत्र सहदेव को बोला कि जो बेस्ट सबसे हम लोगों का उत्तम से उत्तम गेस्ट हाउस है राज, उसमें आवास मिलना चाहिए और सत्कार में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होना चाहिए, पूरा रॉयल रिसेप्शन, खूब बढ़िया रहने के लिए स्थान, इसके बाद बढ़िया से बढ़िया भोजन की व्यवस्था, नाती है प्रथम बार आया हुआ है, स्वागत, और इसके बाद जैसे अतिथि करने के बाद संध्या के समय उन्हीं के साथ देर रात तक बैठा रहा, बातचीत कर रहा था। बार बार कहता है कि तुम भाग क्यों गया, अब मित्रता हो गई कृष्ण से, अब उतने सतुकता नहीं है, आ गया है हमारे घर में कुछ भी है, तो खूब बातचीत हुई, हंसी मजाक होता रहा। दूसरे दिन से बुआ भाई स्टेडियम बनाया गया, स्टेडियम समझे जहाँ प्रजा लोग युद्ध होगा, तो युद्ध को भीम आए हुए हैं हस्तिनापुर से, इंद्रप्रस्थ से भीम आए हुए हैं नामी व्यक्ति, और किसी अकेले युद्ध करना है, खूब बहुत बढ़िया अखाड़ा बनाया गया, स्टेडियम जानते हो ऐसे सीढ़िया के ऊपर चारों तरफ से बना के हजारों हजारों लाखों लोग देख सके, तो ऐसा निर्माण पहले से था राज की, और बढ़िया से उसको सजाया गया। और इसके बाद दो गदा, अब उतर गए दोनों, और लोग देखने के लिए भगवान भी ऑडियंस में बैठ गए, अर्जुन भी बैठ गए, और सारी प्रजा बैठ गई, बड़े बड़े राजा लोग आकर बैठ गए। एक दो लाया वह गदा और दोनों में रख दिया, भीम को कहा कि आप जिसको चुन ले, ऐसा नहीं कि मैं दूंगा, हो सकता है कोई कमजोर मैं दे दूंगा, इसलिए दोनों रख दिया गया, आप एक उठा लीजिए, पहले चांस दिया कि भीम उठाएंगे, भीम एक उठा लिए और एक वह उठा लिए। युद्ध चालू हुआ, गदा युद्ध, सब लोग देख रहे कहो तो ऐसा वर्णन किया गया है कि जब गदा एक टकराती थी एक दूसरे की, तो ऐसा लगता था कि वज्रपात हो गया, बिजली कड़कती है ना, ऐसा आवाज आता था, और उसमें चिंकारियां भी निकल पड़ती थी। सुबह में खा पीकर चालू होता था युद्ध, पूरे दिन भर 3-4-5 बजे तक, इसके बाद युद्ध समाप्त हो जाता था, और इसके बाद फिर बढ़िया से कुछ घाव किसी को लगा है, उसको जरासंध को घाव लगा है, चाहे कहीं घाव लगा है भीम को, तो उससे बढ़िया से राज जो वैद्य थे उपचार करते थे, फिर एक कहीं साथ खाना पीना भी होता था, ये सब एक साथ भगवान खाते थे, भीम अर्जुन सब बढ़िया से रात्रि के समय व्यतीत करते थे। इस तरह 27 दिन तक लगातार, लगातार से मतलब चालू होता था 9-10 बजे खा पी कर और 4-5 बजे तक, 27वें दिन शाम को भीम कहे कि भगवान मैं विजयी नहीं हो सकता, इसमें बहुत ताकत है, इसमें बहुत सारा बल है, मैं क्या करूं। भगवान ने कहा रात्रि के समय 27वें दिन रात्रि में कथा बनता है, आप चिंता मत करो, बहुत बलवान है लेकिन इसमें एक बड़ी भारी कमी है। भगवान कथा कहे, सुनने वाले अर्जुन और भीम थे, और भगवान बताए, भगवान बताए कि एक बहुत बड़े राजा, इसके पिता का नाम था बृहद्रथ, पिता का नाम था जरासंध के, भगवान ने कहा बृहद्रथ, और उनको एक पुत्र हुआ पत्नी के गर्भ से, पुत्र हुआ तो टुकड़ों में हुआ था, जैसे मांस के टुकड़े होते हैं, तो रानी को राज बड़ा दुख लगा, लड़का हुआ और लड़का मरा हुआ लड़का और टुकड़ों में, दो टुकड़ों में। तो क्या हुआ कि रानी ने इसे फेंक दिया जंगल में, दुखी होकर, क्या करें, मांस का टुकड़ा पैदा हुआ तो उसको फेंक दिया गया जंगल में। जंगल में, उस जंगल में एक राक्षसी रहती थी, उसका नाम था जरा, कोई फेंक दे रहा था मांस खाती थी, तो उसको ही पता था कि यह जो मांस का टुकड़ा है रानी के गर्भ से निकला हुआ है, मरा हुआ पुत्र जन्म लिया हुआ है। तो कौतूहल बस उसे देख रही थी, खाना था मांस को खाने के लिए, राजा का थोड़ा प्रेषित कर, राजा रानी की, राजा का पुत्र है, महाराज बृहद्रथ का पुत्र है, हाथ में पकड़ा तो देखा कि जैसे फटा हुआ था, आधा एक कान ऐसे, एक नाक ऐसे, एक पैर वैसे, उसे लगा कि दो भागों में है, अब ऐसे सहसा वैसे करके उसने जोड़ दिया, जे ही ऐसे एक साथ किया तब तो उसमें प्राण शक्ति आ गया, लड़के में श्वास चलने लगा, वही तो उसी दिन जन्म ही हुआ था और जीवित होगा लड़का। तो जरा जो राक्षसी दिखा सकती थी लेकिन सोचा कि बेचारा राजा दुखी है, रानी दुखी है, एक लड़का हुआ है मारा, चलो मांस तो मिलता ही रहता है, लौटा देते हैं, जीत हो गया लड़का। तो आई राज दरबार में महाराज बृहद्रथ के पास, जिनका जरासंध पुत्र था, अर्पित की, कहा कि बता दी कि ऐसी ऐसी बातें हुई है, मैंने उसे खाने के लिए ले रही थी लेकिन ऐसे हमें लगा कि दो टुकड़ में ऐसे जोड़ दिया, जिम ही ऐसे सटाया तो प्राण शक्ति आ गई। आप इस लड़के को रखिए। तो राजा को और रानी को बहुत प्रसन्नता हुई, मरा हुआ लड़का जीवित हो गया, बड़ी प्रसन्नता की बात थी। तो उसने, राजा प्रसन्न थे कि राक्षसी को जो मांगोगी मैं देने को तैयार हूँ, तुम्हें हमारे पुत्र को जीवित कर दिया, और जीवित कर दिया, खा नहीं कि लौटा दी। तो उसने, जरा ने कहा कि नहीं, हमको, मैं संतुष्ट हूँ, केवल इतना ही कहिए कि मेरे नाम से इसका नाम रख दीजिए। तो उसका नाम रख दिया गया जरासंध। तो भगवान बताए, तो ये तो बहुत मजबूत है लेकिन जहाँ यह जुड़ा हुआ है उस पॉइंट पे बहुत कमजोर है, आप क्या करना, अर्जुन भीम को बता दी, आप क्या करना, कभी आपको बार बार होता ही है, जब नीचे गिरता है तो आप सब कुछ छोड़कर अपना, आप क्या करना, अपना दोनों पैर उसके एक पैर पर रख देना और एक दोनों हाथों से दूसरे पैर को पकड़ लेना और उसे चीर देना, एकदम आसान काम है। 27वें दिन के रात्रि में बात हुई, 28वें दिन है, 28वें दिन युद्ध चालू हुआ, तो भीम थोड़ा भूल गए थे यह बात, और उसे गिरना चाहिए, उसको गिरेगा तभी ना पकड़ेंगे, वैसा चांस ही नहीं आता था, लेकिन हठात एक बार गिर गया, और गिर गया तो ये इनको याद नहीं था भीम को क्या करना है, तो भगवान तुरंत खड़े थे, तीन घास लिए थे ऐसे चीड़े, तो उनको याद आ गया। तुरंत भीम ने क्या किया, अपने दोनों पैर को उसके एक पैर पर रख दिया और दोनों हाथों से दूसरा पैर और उसे चीड़े एकदम आसानी से, और दोनों को दो दिशाओं में फेंक दिया, इधर का अंग उधर और इधर का उधर फेंक दिया। यदि एक दिशा में तो पुनः जुड़ सकता था, इधर का उधर हो जाता है, उधर का तो उसमें शक्ति थी, विपरीत हो गया। तो इस तरह से जरासंध का वध भगवान ने कराया भीम से, वध हो गया, वध हो गया तो उसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होने के बाद सहदेव भगवान की अर्जुन और भीम की सेवा में, विशिष्ट सेवा में, जो राजकुमार था उसका पुत्र जरासंध का सहदेव नाम था, वो सेवा में कर रहे। तो भगवान ने सहदेव से कहा, सहदेव भाई लगता होगा ना, खूब 28 एक महीने में खूब मित्रता हो गई थी, भक्त हो गया था, सेवा भगवान करता था। भगवान कहे कि यथोचित राजकीय अंत्येष्टि संस्कार होना चाहिए, तो जरासंध के अंत्येष्टि संस्कार में वो सहदेव कर रहे थे, उसके पुत्र कह रहे थे, भगवान भी एकदम बढ़िया से सक्रिय भाग लिए थे। जरासंध के अंत्येष्टि संस्कार में भगवान भाग लिए, नाना थे तो स्वाभाविक है लेना ही चाहिए। इसके बाद सहदेव को भगवान ने राज सिंहासन पर बैठाया और सहदेव के मुकुट स्वयं भगवान बांधे थे। एक व्यक्ति उपचार होता है, बांधना होता है किसी को, तो स्वयं भगवान सहदेव को मुकुट बांधे थे। महाभारत में ऐसा वर्णन है कि फिर राजसूय यज्ञ हुआ, तो राजसूय यज्ञ में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन धन के संबंध में किसी सहदेव का ही था। हमने पूरी ताकत लगाई कि राजसूय यज्ञ सफलतापूर्वक होनी चाहिए, तो जितने धन की आवश्यकता है, तो इसके पास बहुत धनवान था जरासंध, तो बहुत धनवान व्यक्ति था, बहुत उसके पास समृद्धि थी, तो उसका उत्तराधिकार सहदेव को मिला। और जब राजसूय यज्ञ हुआ युधिष्ठिर महाराज के यहाँ इंद्रप्रस्थ में, तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन धन सबसे बड़ा उस यज्ञ का डोनर यही था सहदेव, उसमें भाग लिया था। भगवान की बहुत मित्रता थी, बहुत भक्त हो गया था। ऐसे लोग कहते हैं, प्रमाणिक तो कथा नहीं है, वो कहते हैं ना कि परीक्षित महाराज कलयुग को स्थान दिए थे रहने के लिए। कथा जानते हैं ना, कौन कौन सा स्थान दिए थे, अभ्यर्थित तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ, द्युतम पानम स्त्रिया सुना, चार स्थान पहले दिए थे। द्युत, द्युत मतलब जुआ, द्युतम पानम इंटॉक्सिकेशन नशा, द्युतम पानम स्त्रिया अवैध यौन संबंध, विवाह के बाहर स्त्री पुरुषों का संबंध, उस स्थान पर कलयुग रहा। द्युतम पानम स्त्रिया सुना, सुना मतलब हिंसा मांसाहार, चार स्थान परीक्षित महाराज ने दिया। कलयुग खुश नहीं हुआ, सब खराब स्थान है, पुनः से याचमान है, फिर से याचना करने भगवान परीक्षित महाराज, थोड़ा अच्छा भी स्थान हमको दीजिए। पुनः से याचमान है जात रूपम अदात प्रभु, तो परीक्षित महाराज ने जब पुनः मांगा तो पांचवा स्थान दे दिया, वह क्या था, सोना, जात रूपम सोना दिया था। लोग कहते हैं कि खूब बढ़िया सोने का मुकुट था जरासंध के पास, उसके स्टोर में रखा हुआ था, और जब सहदेव उसके उत्तराधिकारी हुए तो वह सबसे मूल्यवान कीमती जो राज मुकुट था, सोने का मुकुट था, वह उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को अर्पित कर दिया। बहुत धन ले जा रहे थे, तो सबसे कीमती उसके उतना बराबर कीमती पृथ्वी पर कोई राज मुकुट नहीं था, तो सहदेव ने सोचा कि हमारे युधिष्ठिर महाराज के, युधिष्ठिर महाराज के पास पहुंच गया। और जब युधिष्ठिर महाराज जंगल में चले गए, महाराज परीक्षित राजा बने,
अनेक मुकुट थे। एक दिन जिस दिन जा रहे थे जंगल में, तो वही मुकुट ओरिजिनली वह मुकुट था जरासंध का, वो सहदेव के पास आया था, सहदेव से युधिष्ठिर महाराज के, युधिष्ठिर महाराज के बाद परीक्षित को, तो भूल से अनेक था, तो बदल बदल कर कभी पहनते थे, वही मुकुट पहनकर जंगल में गए हुए थे और उन्होंने स्थान दे दिया कलजुग को कि सोना में निवास कर, तो तुरंत कलजुग उनके माथे पर आ गया और उसी के कारण उन्होंने समीक ऋषि का, श्रृंगी के पिता समीक ऋषि का अपराध किए और वो पूरा डिजास्टर हो गया। लेकिन यह जो बातें कही जाती है यह केवल लोक प्रसिद्ध है, शास्त्र सम्मत यह बात नहीं है, मनोरंजन के लिए कथा श्रेष्ठों के लिए बात कह दी जाती है, लेकिन वास्तविकता वास्तविकता यह नहीं है। परीक्षित महाराज में दुर्भावना आई थी, समीक ऋषि के प्रति दुर्भाव आया था, वह भगवान की विशिष्ट इच्छा से आया था, मुकुट पहनने से नहीं। और ये लोग कथाकार लोग जोड़ लेते हैं, थोड़ा सा लिंक मिला लेते हैं, कथा श्रेष्ठ से कहते हैं, मैंने कथा कहने में बड़ा तो बहुत सा धन सहदेव ने दिया था। और महाभारत के युद्ध में भी जो वहाँ की सहदेव की जो सेना थी और गिरी ब्रज की जरासंध की जो सेना थी, वो युधिष्ठिर महाराज के तरफ से युद्ध की थी, तो यह बहुत बड़ा पता। यह जो घटना घटी थी, जो युद्ध हुआ था भगवान के बीच में और जरासंध के बीच में 18 बार, वह युद्ध लोह वन में हुआ था, कल उसे आप पार करेंगे, और वहीं से भगवान भागे थे, तो उनका नाम रणछोड़ हो गया था। तो हम लोग कल जाएंगे, तो कल स्वाभाविक है, आप लोग जानते हैं हम लोग रुकेंगे तो नहीं, पार कर जाएंगे, तो हम थोड़ा सा उसके याद किए लोहबन की एक कथा, और लोहबन की बात आ गई तो जरासंध की भी हम थोड़ी चर्चा।